one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme God, is not affected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by watching.
जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के करता है और फलों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वो पाप कार्यों से लिप्त नहीं होता, जिस प्रकार से कमल का पत्र जो है पानी से स्पर्श नहीं होता।
This beautiful sloka is being read from the fifth chapter of Bhagavad Gita.
ये जो है श्लोक है ये गीता के पांचवें अध्याय से पढ़ा जा रहा है।
This chapter is entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness.
इस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना में कार्य करना।
Bhagavad Gita was spoken here in this most holy place of Kurukshetra.
भगवद गीता ये बहुत पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में बोली गई थी।
This holy land of Kurukshetra is worshipped by all saintly persons.
ये कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि सब संतों महर्षियों द्वारा पूजित मानी जाती है।
Not only on this earth, but even in the higher planets.
न केवल धरती पर बल्कि उच्च लोक में भी।
भूलोका, भूलोका, स्वर्गलोका, महालोका, तापलोका, जानलोका, सत्यलोका।
ये सब लोक जो महाराज ने बताए सब लोकों में पूजा की जाती है।
The denizens of all of these abodes, they offer their repeating obeisances to this holy tract of land.
वहाँ के भी निवासी जो हैं इस पवित्र भूमि को बार-बार अपना प्रणाम प्रकट करते हैं।
And we find that in our own history, modern history, practically each one of the great acharyas have come to worship this place and show us the importance of Kurukshetra.
हम इतिहास में देखते हैं कि जो आचार्य भी हुए हैं वो यहाँ पर इस भूमि की पूजन करने के लिए आए हैं हमें उसका महत्व बतलाने के लिए।
Of the avatars, it is said that Varahadev had lived here in Kurukshetra.
ऐसा बताया जाता है कि वराहदेव का अवतार यहीं कुरुक्षेत्र में ही हुआ।
Vishnu Maharaj, that great avatar of Vishnu, also appeared here in Kurukshetra.
Vishnu Maharaj, जो विष्णु के अवतार थे, वो भी यहीं पर प्रकट हुए कुरुक्षेत्र में।
Vamanadeva, that great avatar, also appeared and came to the yagya of Bali here in Kurukshetra.
Vamanadeva, जो कि भगवान के अवतार थे, वो भी जो है यहाँ पर आए कुरुक्षेत्र में।
Parasuram also performed his tapasya here at Kurukshetra.
Parashuram ji ne bhi apni tapasya yahi par Kurukshetra mein ki thi.
It is also believed that Lord Ramchandra came here on the solar eclipse to Kurukshetra.
Surya grahan ke avsar par Bhagwan Shri Ramchandra ji bhi yahan par aaye the.
Lord Krishna, even before the battle of Kurukshetra, he also came to celebrate the solar eclipse with all the members of the Yadu and Vrishni dynasties.
सभी यदु और विष्णु के वंशों के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ आए थे।
In fact, it was here, near Brahmasrovar, that Lord Shri Krishna met with the Brijvasis after many, many long years of separation from one another.
वास्तव में यही वो स्थान है ब्रह्मसरोवर के पास, जहाँ पर कई वर्षों के बाद भगवान ब्रजवासियों से पुनः मिले।
Lord Baladev,
बलराम जी भी यहाँ पर आए थे कुरुक्षेत्र में।
the yogic avatar of this age, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, in the year of 1515, in the month of August, he came to observe the solar eclipse in Kurukshetra.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, jo ki kaliyug ke avatar hain, wo bhi san 1515 mein yahan agast ke mahine mein surya grahan ke avsar par aaye
Kurukshetra. Shri Shankara Acharya, the avatar of Lord Shiva, he also came to worship this holy land of Kurukshetra.
Shri Pad Shankaracharya ji, Shiv ji ke avatar hain, वो भी यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए।
Ramanujacharya, the great exalted soul of the Sri Sampradaya, he also came and worshipped this place.
Ramanujacharya जो कि श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं, वो भी इस भूमि पर आए।
Madhvacharya, on his way to Badri Kashi, also stopped here and worshipped Kurukshetra.
और Madhvacharya जी बद्री काशी के मार्ग पे वो भी यहाँ पर के और कुरुक्षेत्र में आए।
Nimbarkacharya also came to this place.
Nimbarkacharya bhi yahan par aaye.
And the Shri Vishnu Swami.
Vishnu Swami bhi yahan par aaye.
And that great Vaishnavacharya, Vallabhacharya, he also came to Kurukshetra to do bhajan.
Aur bade mahan acharya Vallabhacharya ji bhi yahan bhajan karne ke liye aaye.
Our own beloved spiritual masters, Guru Bhakti Siddhanta Saraswati, he built a beautiful math here in Kurukshetra.
हमारे जो गुरु महाराज थे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यहाँ पर एक जो है मठ बनाया कुरुक्षेत्र में
एंड दिस डिवाइन ग्रेस श्री ऐसी भक्ति विराम स्वामी प्रभुपाद दैट मोस्ट होली एंड एग्जाल्टेड सोल हु स्प्रेड सनातन धर्म टू एवरी कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ ही हैड अ वेरी स्ट्रांग डिजायर दैट देयर बी अ ब्यूटीफुल कृष्ण अर्जुन टेंपल इन कुरुक्षेत्र It would attract people from all over the world to come to be benefited by this holy atmosphere.
Shri Prabhupada ji jo hai, unki bhi ichha thi ki duniya ke yahan par ek bahut sundar Krishna Arjun mandir ho, ki duniya ke sab log yahan par aakar aakarshit ho sake.
Of all the Vedic literatures, the Bhagavad Gita is considered the summary and the essence.
सब वैदिक शास्त्रों में भगवद गीता को जो है सार तत्व माना जाता है
कृष्ण चोज टू स्पीक दिस मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन
श्री कृष्ण भगवान ने धर्म की जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही कुरुक्षेत्र में ही समझाया है
बट ड्यू टू misguided leadership in this world and due to the influence of this age of Kali people are rapidly forgetting the importance of these holy places
lekin kaliyug ke prabhav se jo hai log in pavitra sthanon ka mahatmya bhulte ja rahe hain
in fact according to Mahabharata in the Puranas it is said that all the holy places, all the holy rivers, all the great demigods, and all the great saints and sages of the past, they all enter into this Sanihit Sarovar on the occasion of Amavasya here in Kurukshetra.
यह बताया था कुरुक्षेत्र में अमावस्या के दिन सारे देवता, सारे ऋषि, सारे तीर्थस्थान और सारे सरोवर ये सन्निहित सरोवर में एकत्रित हो जाते हैं.
When there was real spiritual culture, millions of people would come here to take advantage of this most rare and precious opportunity to bathe in these waters.
जब आध्यात्मिक संस्कृति थी तो लाखों लोग यहाँ पर आते थे इस पवित्र पानी में स्नान करने के लिए
to perform sacrifice
और यज्ञ करने के लिए
Today I believe is Amavasya.
आज अमावस्या है शायद.
Yes. We have gone to this holy place, Sanihit Sarovar, and we saw there were millions of people.
Maharaj bole, aaj hum wahan par gaye the snan ke liye aur dekha wahan lakhon log nahi the amavasya ke
liye. We just saw a few people.
Bas kuch gine chune thode log the.
We circumambulated this Sarovar and not a single person was taking bath.
Pura parikrama laga di lekin koi ek vyakti bhi nahaa nahi raha tha usme.
We saw a group of sadhus playing cards
वो साधु वहां ताश खेल रहे थे।
It was the most action we saw.
और एक सबसे बड़ा एक्शन कार्य हो रहा था वहां पर।
समर लेकिन चरस और सर
गदस हां समर स्मोक स्मोक समर स्मोकिंग गांजा
इस बार गांजा में
कोई लाइक
कहता मुनि कोई अच्छा से बात करेंगे
Anyways, we know that the real dignity of a holy place is revealed by the holy people.
तो जो पवित्र स्थान की जो महात्मा है वो जो पवित्र लोगों के द्वारा ही समझी जा सकती
है। And that is why our Gurudev was so anxious that there be real, pure bhakti being taught here in Kurukshetra.
इसीलिए हमारे गुरु महाराज की बहुत इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र में शुद्ध भक्ति समझाई जाए।
Because if we carefully study Bhagavad Gita, especially according to the words of the previous acharyas, we find that all of the teachings of Gita are continuously culminating in bhakti.
अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हम समझते हैं कि गीता के सब जो चीजें हैं वो भक्ति में ही खत्म होती हैं।
Although there are so many teachings, Gyan Yoga, Sankhya Yoga, Karma Yoga, it all culminates in surrender to Krishna.
वैसे तो कई चीजें हैं कर्म योग ज्ञान योग संख्या योग लेकिन सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण करने में ही खत्म होता है।
अप्य माम अभी जानाति यावन यस्य सुतः अप्य त्वरेण यास्य अहम् एकामि कृष्ण tells Arjuna it is only through bhakti that you can know me as I am.
कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। अर्जुन तो भी शिक्षा समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्स्य सर्वं प्रवर्तते इति मात्र तो जानते हो भूत भाव सुनो। But I am the source of everything that exists. And those who are wise and know this perfectly, they engage in my loving service.
मैं सब चीजों का स्रोत हूँ और जो बुद्धिमान हैं वो मेरी सेवा में लीन होते हैं।
वासुदेव सार्वभौमिकी समाहर्षण। Explains what is the real definition of a true Mahatma.
भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि महात्मा का सही परिभाषा क्या है।
That after taking many, many births of following the various schools of yoga and religion, one who surrenders to Vasudev, he is a great soul.
बहुत सारे जन्मों में जो ज्ञान करने के बाद जो वासुदेव की शरण में आता है वही महात्मा पुरुष है।
महात्मनास्तु मां पारता दैवीं प्राप्तिति मोक्षः अजान्ते नाम मनुष्यः जातोऽपि महात्मयः। Again, he explains what is Mahatma. One who is a real Mahatma, he is always under the protection of my spiritual energy, and he is always engaged in my loving service.
ये सच्चा महात्मा है, वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित में होता है, और वो हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है.
To the degree people can understand the importance of Kurukshetra. To that degree, they will really understand the real importance of the Gita.
जितना लोग कुरुक्षेत्र का महात्म्य समझेंगे, उतना ही वो भगवत गीता का महात्म्य को समझ पाएंगे.
And of course, if people really understand the true importance of Gita, they will also understand the importance of
Kurukshetra. और वास्तव में लोग जो है भगवत गीता का महात्म्य समझेंगे, तो कुरुक्षेत्र का भी महात्म्य समझ जाएंगे.
Bhagavad Gita is the most important teaching that has ever been given to mankind.
Bhagavad Gita jo hai sab manavta ko di hui sab shiksha mein sabse pradhan hai
in the history of humankind.
Sare manavta ke itihas mein.
Because it is a living scripture.
Kyunki ye jeevit shastra hai.
Which teaches every person
whatever classification of life one may be in, how to become a perfect lover of God.
वो हर एक व्यक्ति को ये समझाती है कैसे भगवान से सच्चा प्रेम करना है.
Krishna is here explaining that we must perform our duty without attachment.
भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि बिना आसक्ति के हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए.
But that's not all.
लेकिन यही सब कुछ नहीं है.
You see, in this world, people are so habituated to sense enjoyment that they perform their work with so many selfish motives.
लोगों को इंद्रिय तृप्ति इतनी आसक्ति है कि वो सब कार्य जो अपने स्वार्थ इच्छाओं से करते हैं.
With so much ego,
इतने अभिमान से करते हैं.
To do your duty without attachment simply brings you from the negative level to the zero level.
अगर बिना आसक्ति के कोई व्यक्ति कर्तव्य करता है तो वो जो है नेगेटिव से सिर्फ शून्य तक पहुंच जाता है.
It's like if you are in great debt. To come to the platform of having nothing, with no debt, is a great relief.
जैसे किसी के ऊपर कोई कर्जा लगा हुआ है तो उस तरफ पहुंचना कि कर्जा मिट जाए तो भी बहुत राहत मिल जाती है.
People think that this is the goal of the Gita, to do your duty without attachment.
लोग सोचते हैं कि गीता का उद्देश्य यही है कि बस बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य करो.
But as I say, that just brings you to the level of zero.
लेकिन वो सिर्फ तुम्हें शून्य के स्तर पर ले आता है.
You're no longer implicated by bad karma and bad debts.
उसमें जो आपको फिर बुरे कर्म नहीं रह जाते.
But he goes on, Brahmani adhaya karma. Then not only should you perform the work without attachment to your own personal self-interest, but you should surrender the results of your duties to the Supreme Lord.
तो वो आगे बताते हैं कि न केवल अपना कर्तव्य बिना आसक्ति के करना है, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान के प्रति समर्पित करना है.
In this regard, our Gurudev would sometimes use the example.
इसके बारे में हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण का उपयोग करते थे. तीन प्रकार के लोग होते हैं.
If you're walking down the street and you see 500 rupees,
अगर आप सड़क पर जा रहे हैं 500 रुपए का नोट देखते हैं,
you know it belongs to someone else.
आपको मालूम है ये किसी और का है.
If you pick it up, you keep it for yourself, you are to be understood as a thief.
अगर आप वो ले लेते हैं अपने जेब में रख लेते हैं तो आप चोर कहलाते हैं.
There's another class of people who see the 500 rupees on the street and they think, if I pick it up, I'm a thief and I will be incriminated with bad karma. I may even be punished, so I will leave it on the street and I will walk away.
दूसरे श्रेणी के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि 500 रुपये नोट मेरा नहीं है, अगर मैं ले जाऊंगा तो चोरी होगी, इसलिए यहीं रहने दो, सड़क पे पड़ने दो.
This is a person who's detached.
ये वो व्यक्ति है जो कि अनासक्त है.
But that is not the ideal, to just be detached.
लेकिन ये एक आदर्श नहीं है अनासक्त रहना.
The first class human being, when he sees that 500 rupees on the street, he thinks, oh, I know who this belongs to. I will pick it up.
तो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति होता है वो कहता है हाँ मेरे को मालूम है किसका है, मैं उसको लेकर उसी को लौटा दूंगा.
Similarly, in this world, Krishna says in Gita, Bhoktaram jagat tapasam sarvalokaneshwaram suhridam sarvabhutanam jatavam shantivrishtam. That everything in the entire creation belongs to me.
भगवान कृष्ण कहते हैं पूरी सृष्टि में सब कुछ मेरी संपत्ति है.
Everything is meant for my enjoyment.
सब कुछ मेरे भोग करने के लिए.
This whole creation is called Prakriti, and I am the one supreme Purusha.
ये पूरी यह प्रकृति है और मैं एक पुरुष हूँ.
Purusha means enjoyer. Prakriti means what is meant for his enjoyment.
पुरुष का मतलब है भोक्ता और प्रकृति का मतलब है जो उसके भोग्य के लिए है.
Our bodies and our very atmas, our souls, are prakriti. They are meant for Krishna's enjoyment.
हमारा शरीर और सब कुछ जो है वो कृष्ण के आनंद के लिए है.
One who takes the things of this world and says, "This is mine," janasya mohaya mahamameti, that I am this body, and those things in relationship to this body are meant for my enjoyment.
He is जो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे लिए है, शरीर मेरा है और शरीर संबंध मेरी है, तो वो चोर है.
And there is another class of people who are tired of being punished by the laws of karma because of all of their selfish activities, and they say the things of this world belong to God, so I don't want anything to do with any of it.
और दूसरे श्रेणी के लोग होते हैं, वो तंग आ जाते हैं, बोलते हैं ये तो भगवान का, मेरे को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है.
If someone comes to give me money, I will say no, keep it away. I will be contaminated if I touch it.
ऐसे लोग के पास अगर कोई पैसा देने आए तो बोलते नहीं नहीं दूर ले जाओ, इसको मैं छूने से मैं दूषित हो जाऊंगा.
Or is doing any work? No, I don't want to do any work because I will be implicated.
और कोई काम करने के बाद उसे बोलते नहीं मैं कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि काम करने से फंस जाऊंगा.
There are many yogis and sadhus who come to this conclusion in life.
कई योगी साधु जो हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं.
But who is the Mahatma?
लेकिन महात्मा कौन?
According to Krishna's definition.
कृष्ण की परिभाषा में.
That person who sees that everything is the property of Krishna, let me use everything for Krishna's service.
जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, सब कुछ मैं कृष्ण की सेवा में लगाना है.
This is practical philosophy.
ये जो है व्यवहारिक दर्शन है.
I have a family.
मेरा एक परिवार है.
There's nothing wrong with family.
परिवार होना गलत नहीं है.
As long as I realize it's not my family.
जब तक हमें जान लेते हैं कि मेरा परिवार नहीं है,
कृष्ण
ये कृष्ण का परिवार है.
We may come together with a husband or wife and produce children, but really we don't even know what's happening.
हम तो पुरुष स्त्री एकत्र हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति होते हैं, हमको मालूम नहीं क्या हो रहा है.
Krishna has created that soul, and Krishna has created the body of that soul.
कृष्ण ने आत्मा को बनाया है और कृष्ण ने शरीर को बनाया है.
Child is the property of God.
ये बालक जो है भगवान की संपत्ति है हमेशा के लिए.
And the Krishna conscious vision is to understand that this child is being entrusted under my care.
कृष्ण वर्णन का मतलब ये है कि ये बच्चा मेरे हाथों सौंपा गया है बड़ा करने.
Kitana sasyat tilinina sasyat. Bhagavatam explains that one actually has no moral right to be a parent unless one will give his life or her life to train that child so he never has to take birth again in this material world.
शास्त्र में कहते हैं कि व्यक्ति को माता या पिता बनने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि अपने बच्चों को जो है से जन्म मृत्यु छुड़ा सकता है.
If we simply send our children to school, to college, to university, to get all big, 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 big degrees, just so that they can make lots of money, or marry some rich person and have a grand way of eating, sleeping, mating, defending in this world, then we have actually cheated our child of the most precious and most important gift of life.
अगर हम ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे जिस पर पढ़ाई लिखाई करेगा और खाना सिखाते हैं तो उसको हम मानव जीवन से जो है बिल्कुल धोखा दे रहे हैं.
Along with sending them to school and teaching them how to get their big degrees, we must teach them what the purpose of life is.
हमें ये सब करने के साथ साथ उन्हें भी सिखाना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है.
Who they really are.
वो कौन है.
And what their relationship is.
और कृष्ण से क्या संबंध है.
This we will not find in the ordinary universities. This we will find in Bhagavad.
ये हमें साधारण विश्वविद्यालय में नहीं दिखाई पड़ता है.
You cannot teach a child what you do not know.
अगर आपको नहीं मालूम तो बच्चों को नहीं सिखाएंगे.
And even worse is to try to teach them and do something different.
और सबसे बुरी बात ये है कि कुछ और गलत चीज सिखाना.
You know, recently, one of our devotees in Bombay went to the University of Pennsylvania
in America.
There's a course for mothers with newborn children.
वहाँ पे एक कोर्स होता है जो माताएं के छोटे बालक या नए उनके लिए होता है.
And it's considered the most successful course of its kind in the whole wide world.
वो पूरे दुनिया में जो है सबसे सफल कोर्स माना जाता है अपने उसके अनुसार.
How to train a child to learn to its full capacity.
कैसे जब बच्चे शिक्षा दी जाए जिससे वो ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें.
Of course, the University of Pennsylvania is thinking in terms of the child's material capacity.
The university तो यही सिखाती है कि भौतिक क्या क्षमता है.
But there's something to learn from the way they teach.
लेकिन उनका सिखाने का ढंग है उससे हम कुछ सीख सकते हैं.
The mother is supposed to start teaching the child when it's in the womb.
माता को तभी सिखाना चाहिए जब बच्चा जो है गर्भ में होता है.
And they have evidence of proof that by the time a child is 4 years old, he can know 8 languages perfectly.
और उनका सबूत होता है कि जब बच्चा 4 साल का होगा तो 8 भाषाएं अच्छी तरह से सीख जाएगा.
And the child can also just have such a brilliant memory.
Can
learn all types of sciences, mathematics by the time they're 4.
और 4 साल की उम्र में इतना विज्ञान और गणित सब सीख लेते हैं.
But they teach that the real education will never come from the school. It has to come from the mother.
और वो ये बताते हैं कि सच्चा जो ज्ञान है वो स्कूलों में नहीं मिलेगा, वो माता से मिलना चाहिए.
The University of Pennsylvania says sending a child to school is third-class education.
यूनिवर्सिटी का कहना है कि बच्चे को स्कूल भेजना ये तो थर्ड-क्लास शिक्षण है.
There is no one in the whole world that can teach your child education better than the mother.
माता से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो बच्चे को सिखा सकता है.
But the mother cannot teach the child anything that she doesn't know.
लेकिन माता खुद नहीं सिखा सकती तभी तो खुद को नहीं आता.
And therefore the teaching is the mother has to learn all these things.
लेकिन इसलिए वो यूनिवर्सिटी में जो है पहले माता को सब कुछ सिखाया जाता है. सब चीज़
में शायद वो लर्न एवरीथिंग
और बच्चा अपने आप सीख जाएगा.
व्हाट इज स्पीक ऑफ स्कूल फॉर दैट.
और आध्यात्मिक जीवन के बारे में तो कहना ही क्या.
द पेरेंट्स आर गॉड कॉन्शियस एंड लिविंग अ प्योर लाइफ ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस परफॉर्मिंग प्रॉपर पूजा with a philosophical understanding why, and teaching the child this, then naturally the child will become a perfect lover of God.
अगर बच्चे कृष्ण भावना है और दिखा रहे हैं पूजा किस लिए करना है तो बच्चा जो है भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है.
Or at least the child will have been given every best chance to become a perfect lover.
और कुछ नहीं तो कम से कम उसको अवसर मिलेगा कि सच्चा प्रेमी बनने का.
The parents these days, they are so busy making money and so busy worrying about providing a future of making money for their children that they just don't have time for their own God consciousness, and in this way they cheat their children of the most valuable gift of life.
लेकिन यहाँ पर बच्चों को जो है इतने इसमें पैसे कमाने में मारा लगे रहते हैं कि उनको बच्चों को सिखाने के लिए समय नहीं होता और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं सिखा पाते.
Sanatana Dharma is so simple.
Sanatana Dharma is very simple.
Although it is explained in very deep philosophical terms in the Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda.
Halanki wo Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, sab mein sikhaya jata hai.
There's 108 Upanishads.
Aise 108 Upanishads bhi bataye jate hain.
There's 18 Puranas.
18 Puran hai.
There's 100,000 verses.
महाभारत 1,00,000 श्लोक है.
रामायण ब्रह्म सूत्र इतिहास
और कई इतिहास हैं.
सो मच फिलॉसफी
इसमें कई कितना दर्शन और हजारों ऐसी टीकाएं हैं आचार्य द्वारा लिखी
हुई.
लेकिन वास्तव में बहुत सरल
है.
ये सब इसी श्लोक में समझाया जा रहा है.
Simply, whatever you do it as a service to God.
जो भी करो बस भगवान की सेवा के रूप में करो.
That's the combination of all philosophy.
ये जो है सारे दर्शन शास्त्र का तर्क का अंत है.
In Vrindavan there is the beautiful story of the wives of the Brahmins.
वृंदावन में कथा है ब्राह्मण पत्नियों की.
The Brahmins were great famous gurus who knew all Sanskrit and all rituals and all pujas.
और ब्राह्मण बड़े इतने जो है पढ़े लिखे थे उनका पूजा वगैरह करना अच्छी तरह से जानते थे.
कृष्ण सेंट हिज फ्रेंड्स टू गो टू द ब्राह्मण्स तो
कृष्ण ने अपने मित्रों को भेजा कि जाओ मुझसे कहो कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को थोड़ा प्रसाद दो।
The Brahmins were too busy performing their pujas and chanting their mantras.
लेकिन ब्राह्मण
to take the opportunity to fulfill all of their spiritual practices at pleasing Krishna.
ब्राह्मण इतने व्यस्त थे सब अपने कार्य में कि उन्होंने अवसर को स्वीकार भी नहीं किया कृष्ण की पसंद करने का।
Their lives were spoiled.
उनका जीवन बर्बाद हो गया।
But their wives, they were just simple housewives. They knew no Sanskrit, they knew no pujas, they knew nothing, no mantras. They just knew cooking, taking care of children, cleaning house and all these things.
वो माताएं थी उनको तो कुछ आता नहीं था कि कैसे मंत्र वगैरह बोलने अवश्य बच्चों के ख्याल रखते थे घर साफ करते थे पकाते थे।
When Krishna's friends asked them for prasad, they personally collected the best prasad.
जैसे कृष्ण के मित्रों ने प्रसाद मांगा तो सब वो खुद जाकर सबसे अच्छा प्रसाद ले आए।
And they said, we want to personally offer it to the beautiful Lord Balaram Shri Krishna.
तो उन्होंने कहा हम खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को खिलाना चाहते हैं।
And they came and made a beautiful darshan of Lord Krishna, offered him the best they had, and they achieved the ultimate goal of life.
और वो आए और उन्हें अर्पण किया और जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर लिया।
They achieved mukti and they achieved bhakti.
उनको मुक्ति भी मिली फिर भक्ति भी मिली।
What was their qualification?
उनकी क्या योग्यता थी?
They simply wanted to please Krishna.
वो सिर्फ श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे।
आपका
चाहे कोई वर्ण या आश्रम हो उसकी स्थिति इसी में है कि कृष्ण की सेवा में लगा जाए।
Essentially, this is what Bhagavad Gita teaches.
वास्तव में यही है जो भगवत गीता सिखाती है।
But it gives us a very, very deep philosophical comprehension by which we can defeat all the illusory opposition that comes between us and simply pleasing Krishna in whatever we do.
और ये जो है हमारे और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बीच में जो सारी बाधाएं आती हैं उनको हराने के लिए दर्शन शास्त्र है।
And therefore it is very necessary to understand Gita as it is.
इसीलिए भगवत गीता को यथारूप में समझना अत्यंत आवश्यक है।
And whoever is helping us to understand this simple way of life is truly our best friend and well-wisher.
जो व्यक्ति हमें इस विज्ञान को समझने के लिए सहायता कर रहा है वही हमारा मित्र और हितैषी।
When Lord Chaitanya came to this world, he came to inspire everyone to understand the essence of all knowledge, which is to act in such a way to awaken the dormant love of God in our hearts.
जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पर आए तो उन्होंने इसलिए एक ढंग सिखाया कि ऐसे किस तरह से कार्य करना जिससे हमारे अंदर भगवत प्रेम की जागृति हो सके।
And he taught that this process has actually been made simple in this age of Kali Yuga.
और उन्होंने ये सिखलाया ये तरीका जो है कलयुग में बहुत आसान हो गया है।
The name of God is the supreme purifier which cleanses the heart of all egoistic selfish motives.
भगवान का नाम एक ऐसी चीज है जो कि हृदय के सारी जो भौतिक कर्मश है इसका नाश कर देता है।
And awaken the original natural inclination of the soul,
और आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको पुनः जागृत कर लेता है।
Which is to serve God, to love God.
और वो है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना।
If we properly chant the names of the Lord and associate with the Lord's sincere devotees, then the direction of our life will naturally be toward perfection.
अगर हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे-धीरे हम परम सिद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे.
And this is the most important thing to understand in our lives.
और यही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि समझनी है.
The satsang of sadhus in Hari Naam japa and Hari Naam kirtan should be not put behind any other priority of life.
Satsang और Hari Naam kirtan ये सबसे आगे होना चाहिए हमारे जीवन में.
Because through this purification of our consciousness, everything else we do will be acceptable.
क्योंकि जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तो भगवान के द्वारा जो भी हम करते हैं भगवान को स्वीकारनीय हो जाएगा.
To perform sadhana without work means we become ritualistic and empty in our religious practice.
तो अगर हम सिर्फ साधना करते हैं बिना कार्य के तो ये सिर्फ एक रीति रिवाज के रूप में हो जाता है.
But to perform work without sadhana is like the husk of rice with no rice inside.
लेकिन सिर्फ काम करते रहना बिना साधना के वो ऐसे है जैसे चावल का जो है दाना निकाल लो और फिर छीके वो फूटते रहो.
It looks like rice, but there's no substance.
वो चावल की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर कुछ नहीं होता.
Our sadhana gives our consciousness spiritual substance.
क्योंकि साधना के द्वारा हमारी चेतना में जो है आध्यात्मिक शक्ति आती है.
In our works in this world are meant to be the expression of that spiritual substance as an offering to God and humanity.
हमारे कार्य जो है वो भगवान को अर्पण होने चाहिए.
So both of these two principles must coexist.
ये दोनों सिद्धांत एक साथ चलने चाहिए.
If we neglect either one, our spiritual lives will be incomplete.
अगर हम इस एक की भी अवहेलना करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरा पूर्ण रह जाएगा.
After all, Arjuna, his sadhana was that he sat and listened to Krishna speak Bhagavad Gita at Jyotisa.
और अर्जुन की साधना क्या थी कि वो ज्योतिष के पास जो है बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को श्रवण करते हैं.
And after he purified his heart by hearing this message, he went out and he performed his duty in that consciousness.
और वो करने के बाद जो है वो गए और जो अपनी कर्तव्य उसी चेतना में किया.
दुर्योधन also fought the same war.
दुर्योधन ने भी वही लड़ाई की.
What was the difference between Arjuna and Duryodhana?
अर्जुन में और दुर्योधन में अंतर क्या था?
As far as their duties, there was no difference.
अपने कर्तव्य में कोई अंतर नहीं था.
Duryodhana was shooting arrows and driving chariots and arranging military formations, and Arjuna was doing exactly the same thing.
अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही जो तीर चला रहे थे और सेना को लगा रहे थे, एक-एक चीज कर रहे थे.
The difference was Arjuna took the time.
ज़्यादा मात्रा से फायदा नहीं है.
It is not so much important how much you do, it's how you do it.
कितना आप करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस भावना से करते हैं वो महत्वपूर्ण.
So Duryodhana fought the same way as Arjuna, but because he had no proper sadhana, because he didn't hear submissively from the Lord, whatever he did was the cause of bondage and ultimately his death.
क्योंकि दुर्योधन ने कोई साधना नहीं की थी, उसने जो कुछ भी किया उसका फल ये हुआ कि उसका बंधन और अंत में मृत्यु हो गई.
Arjuna's activities were the cause of his liberation.
Arjun ke kaarya ka phal hua ki usko mukti prapt hui.
The difference was their consciousness.
Farak unki chetna mein tha.
It is sadhana that purifies our consciousness.
Sadhana ke dwara hamari chetna jo hai shuddh ho jati.
We must make time every day for sadhana.
Isliye hame roz samay nikalna chahiye sadhana ke liye.
And then we go out to do our work properly.
और फिर हम अपना कर्तव्य जो है ठीक भावना से कर सकेंगे.
And what are the principles of sadhana that are most essential?
और साधना के सबसे महत्वपूर्ण क्या सिद्धांत हैं?
The essence of sadhana is to remember Krishna.
साधना का सार है श्री कृष्ण को स्मरण करना.
मन मना भव मत भक्तो मत जीव मन नमस्ते मन वैशेषी शक्ति प्राप्ति करने की Always think of me, become my devotee, worship me and offer homage to me. In this way you will come to me without fail.
भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरे को प्रणाम करो, ऐसा करने से जो है निश्चित तुम मेरे पास आओगे।
अंतकाल चनामेवा स्मरणत्वा कलेवा यमलं भक्ति स्मरणवारं तुजत्वं ते कलेवा संतं रिवायति कौन्तेय सदा भाव भाव। What you think of at the time of death you attain. Krishna says one thinks of me at the time of death attains me.
जो भी हम सोचेंगे वही चीज मिलेगी। अगर कृष्ण कहते हैं मेरे बारे में सोचोगे तो मैं मिलूंगा।
If you're thinking of doing your work without attachment at the time of death, you will not attain God.
अगर आप सोच रहे हैं खाली बिना आसक्ति में कार्य करूंगा तो अंत में भगवान नहीं मिलेंगे।
If you think of doing charitable, pious work at the time of death, you will not attain God.
अगर आप दान करने के बारे में सोचोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
You have to be thinking of God to attain God.
अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान के बारे में सोचना होगा।
So we must learn how to perform our work in this consciousness.
Amen.
And this sadhana is most essentially performed. One, by regularly associating with genuine, true spiritual devotees of the Lord.
ये चेतना जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहली बात कि भगवान के सच्चे भक्तों का नियम को संग करना।
साधु सत्संग doesn't mean sitting on the banks of Sanehit Srovar playing cards.
साधु से मतलब ये नहीं कि सनेह सरोवर पर जाकर ताश खेलना।
Even if the card players have saffron cloth and beards and trousers.
चाहे वो जो वो लोग ताश खेल रहे हैं तो चाहे भगवे कपड़े हो, दाढ़ी हो और त्रिशूल लेके घूम रहे हो।
साधु सत्संग इज नॉट सिटिंग अमंगस्ट साधुस विद मैटेड हेयर विद नथिंग बट लॉयन क्लॉथ स्मोकिंग गांजा।
और उसका मतलब ये भी नहीं है कि बड़े लंबे लंबे बाल हैं और जो है गांजा पी रहे हैं।
साधु सत्संग मींस मीटिंग हंबल सिंसियर डिवोटीज एंड हियरिंग
the glories of the Lord in their association.
Sadhu satsang is the first most important principle of sadhana. And the second is to regularly chant the names of God. In this age of Kali Yuga it is said, Harinama, 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 Eva Kevanam, Kalo Nasteva, 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 Gatira, Vita. It's the only way of liberation in this age.
इस युग में कहा गया कि यही एक तरीका है कि सिर्फ हरि का नाम ही है मुक्ति के लिए।
All of the processes of yoga have minimal value in this age of Kali Yuga.
और दूसरे जो सब तरीके हैं उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है कल युग में।
This age of Kali is an ocean of defects, but the one blessing in this entire Kali Yuga, which is 432,000 years, is that simply by chanting Krishna's name, everyone and anyone can attain perfection of liberation.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कलयुग में कि सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है।
And the most important principle to develop the proper quality in our chanting of the name is we must avoid sinful activities.
और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें जप के साथ साथ नाम में पाप नहीं करने चाहिए।
According to the Shastras, there are four pillars of sin.
शास्त्र के अनुसार चार प्रकार के पाप के खंभे हैं।
We must avoid them at all costs.
उनको रोकना चाहिए किसी भी कारण से।
Eating of meat, fish or eggs.
मांस मछली अंडा का ग्रहण करना।
Gambling.
जुआ खेलना।
Taking any type of intoxication.
नशीली पदार्थों को ग्रहण करना।
And illicit sex.
और अवैध स्त्रीसंग करना।
We must avoid these four pillars of bondage. Regularly associate with devotees of the Lord. And very strictly every day chant the holy name.
भगवान के भक्तों का संकल्प करना चाहिए, ये चार नियमों का पालन करना चाहिए और हमेशा भगवान का नाम जप कीर्तन करना चाहिए।
And if we are grihasthas, we should make a simple altar in our home, and we should offer our food to the Lord, bow down to the Lord, and teach our children
and our family members how to put God in the center of our household life.
अगर हम गृहस्थ हैं तो घर में छोटा सा मंदिर बना के जैसे कुछ भोगन भगवान को भोग लगाएं और सिखाना चाहिए परिवार में कैसे भगवान को केंद्र बनाना है.
Anyone,
ये तो कोई भी कर सकता है.
And Krishna is explaining here that if you live in this way, you'll never be affected by sinful reactions.
कृष्ण भगवान बता रहे हैं अगर ऐसा जीवन बिताओगे तो पाप के द्वारा लिप्त नहीं होगे.
Even though you do your work, you will be like a lotus leaf. Untouched by
water.
Even if we're living in a contaminated city like New York or London or Delhi or Bombay, if we just live according to these principles of sadhana,